नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। हमारी पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 दिसंबर 2022 को भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि है। वह समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विचारक, राजनीति तज्ञ और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू और गांधी के साथ आगे बढ़कर नेतृत्व किया और समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों को उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर ने दलित बौद्ध अभियान को आगे से नेतृत्व किया और उनके समान मानवाधिकारों और बेहतरी के लिए लगातार काम किया। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। अपडेट है पुस्तक के बारे में। रीता राममूर्ति गुप्ता ने सावित्रीबाई फुले पर नई किताब की घोषणा की। महात्मा ज्योतिराव फुले की 132वीं पुण्यतिथि पर हार्पर कॉलिंस और रीता राममूर्ति गुप्ता ने दोस्तों सावित्री और फातिमा के बारे में एक नई किताब की घोषणा की, जिन्होंने 19वीं सदी में महिलाओं और पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किया। लेखक ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि कैसे छोटी मलाला को तालिबान ने गोली मार दी थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में सावित्री और फातिमा पर पथराव किया गया था, जब वे घर घर जाकर अभिभावकों से अपनी लड़कियों और पिछड़ी जातियों की लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए कह रहे थे। ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल ग्रेट ब्रिटिश और ग्रेट मिशनरी शुरू किया। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित होगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह अभी तक कैबिनेट का फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने से संबंधित तकनीकी और अन्य पहलुओं पर गौर करेगी। पर्यटकों की भीड़, जगह की कमी और कठिन भौगोलिक स्थानों को देखते हुए उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। हालांकि एक बड़ा वकीलों की और स्थानीय लोगों का एक वर्ग इस कदम का विरोध कर रहा है। अगली अपडेट है शिखर और सम्मेलन के बारे में। चीन ने भारत के बिना पहला चीन हिंदी महासागर क्षेत्र फोरम आयोजित किया। चीन ने दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अपने बढ़ते प्रयासों को जारी रखते हुए इसने हाल ही में विकास सहयोग पर पहले उच्च स्तरीय चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम का आयोजन किया, जिसमें भारत को छोड़कर इस क्षेत्र के 19 देश शामिल थे। यह कार्यक्रम चुपचाप 6वें चीन दक्षिण एशिया एक्सपो और चीन हिंद महासागर क्षेत्र थिंक टैंक फोरम सहित कई अन्य कार्यक्रमों के साथ कुनमिंग में एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया था। हालांकि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर में एक बड़ी उपस्थिति और भूमिका के लिए चीन की निरंतर खोज को दर्शाता है। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। भारत ऑस्ट्रेलिया प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास 28 नवंबर में से राजस्थान में शुरू किया गया था। द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंदू 22 भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ियों के बीच 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में होने वाला है। यह अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद की श्रृंखला में पहला अभ्यास है जो दोनों सेनाओं से सभी हथियारों और सेवाओं की भागीदारी के साथ होगा, मंत्रालय ने एक बयान में यह कहा। अगली अपडेट है मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी को गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह पहली बार होगा जब मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मिस्र भी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के 9 अतिथि देशों में से एक है। यह उल्लेख करना उचित है कि भारत ने COVID-19 महामारी के कारण 2021 और 2022 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसी भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया है। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन की ओर। एयरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में होगा। एयरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक वायुसेना स्टेशन येलहंका बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि वायुसेना स्टेशन येलहंका 1996 से शो की मेजबानी कर रहा है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 में भारतीय और विदेशी दोनों प्रदर्शक होंगे। यह आभासी प्रदर्शनियों की सुविधा भी प्रदान करेगा। द्विवार्षिक शो व्यापार आगंतुकों और आम जनता दोनों के लिए खुला है। द्विवार्षिक शो 5 दिनों में अधिक से अधिक के लिए योजना किया जाएगा। 2021 में कोविड महामारी के कारण शो को 3 दिवसीय कार्यक्रम में घटा दिया गया था। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै में अरितापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। तमिलनाडु सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत मदुरै जिले को मेलूर के पास अतिरापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह स्थल 193.21 हेक्टर के क्षेत्र में स्थित है और राज्य में अधिसूचित होने वाला पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। एक बयान के अनुसार अरितापट्टी गांव 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है जो वाटरशेड के रूप में कार्य करता है और 72 झीलों, 200 प्राकृतिक स्प्रिंग पुल और 3 चेक डैम का समर्थन करता है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय के ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन को स्वर्ण पुरस्कार मिला। पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार टीम ई गवर्नेंस द्वारा किए गए उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्य की मान्यता है और टीम NICMOPR द्वारा समर्पित है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार श्री आलोक प्रेम नागर संयुक्त सचिव MOPR को केंद्रीय MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सौंपा गया। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपडेट की ओर। यह अपडेट आखिरी अपडेट है। WHO द्वारा मंकी पॉक्स रोग का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि एमपॉक्स अब मंकी पॉक्स का नया नाम है। संगठन ने कहा दोनों नामों का एक साथ 1 साल तक उपयोग किया जाएगा जब तक मंकी पॉक्स नाम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। संगठन ने कहा कि मंकी पॉक्स का नाम 1970 में रखा गया था जब बंदरों में बीमारी का कारण बनने वाले वायरस की खोज की गई थी, लेकिन मंकी पॉक्स शायद बंदरों में शुरू नहीं हुआ था। इसकी उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है और वायरस कई अन्य प्रकार के जानवरों में पाया जा सकता है। यह नाम 2015 में WHO द्वारा बीमारियों के नामकरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रकाशित करने से पहले बनाया गया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं RJ उद्धव आपसे इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो, रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सुन रहे हैं रेडियो MPSC गुरु, आप कुशल मंगल होंगे इसी कामना के साथ बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। मैं RJ उद्धव आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली करंट अपडेट अफेयर्स क्वीज हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। हमारी पहली अपडेट है 3-in-1 अकाउंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने ब्रोकिंग पार्टनर SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही जवाब है इंडियन ओवरसीज बैंक ने ब्रोकिंग पार्टनर SMC ग्लोबल के साथ 3-in-1 अकाउंट यानी SB डैमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए समझौता किया है। जहां SB और डैमेट खाता IOB के पास होगा, वही ट्रेडिंग खाता SMC ग्लोबल के पास होगा। अगली अपडेट क्विज है, किसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। सही जवाब है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष मिनेश सिंह शाह, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो गया था, उनको निदेशक मंडल द्वारा कार्यकारी निदेशक से प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है, जहां शाह स्वयं सदस्य हैं। अगली क्विज है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड किस कंपनी का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। सही जवाब है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कथित तौर पर अनुमानित 6000 से 7000 करोड़ रुपए में बिस्लेरी इंटरनेशनल का अधिग्रहण करेगी। बिस्लेरी जो भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पानी कंपनी है, उसको फाइनल ईयर 2023 में 220 करोड़ रुपए के लाभ के साथ 2500 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। अगली क्विज है, संविधान दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया। संविधान दिवस का उद्देश्य संविधान के महत्व और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जागरूकता लाना है। अगली क्वीज है, ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए ई मोबिलिटी ऐप की मैप हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के बिजली बोर्ड द्वारा विकसित किया गया था? सही जवाब है केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जो ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों की सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक सामान्य मंच के रूप में काम करेगा। KSEB के अधिकारियों ने कहा कि केरल ई मोबिलिटी ऐप नाम का ऐप अब परीक्षण मोड पर है और जल्द ही प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। अगली क्विज है, इस वर्ष राष्ट्रीय क्रेडिट कोड की स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? सही जवाब है विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय क्रेडिट कोर ने 27 नवंबर 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। यह दिन पूरे देश में मनाया गया, जिसमें कैडेटों ने मार्च पास्ट सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया। अगली क्वीज है, किस नगर निगम और सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है? सही जवाब है इंदौर नगर निगम, देश के पहले स्थानीय सरकारी बांड को व्यक्तिगत निवेशकों को लक्षित करने की योजना बना रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए आय का उपयोग किया जाएगा। यह 10 साल की बॉन्ड बिक्री के माध्यम से 2.6 बिलियन रुपए यानी कि 31.8 मिलियन डॉलर तक जुटाना चाहता है। अगली क्वीज है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार फाइनल ईयर 2023 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान क्या है? इसका सही जवाब है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को सितंबर में अनुमानित 7.3% से घटाकर 7% कर दिया है। हालांकि इसने कहा कि घरेलू मांग की नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी से कम प्रभावित होगी। अगली क्वीज है, निम्नलिखित में से किस देश को हराकर कनाडा ने अपना पहला डेविस कप खिताब जीता? इसका सही जवाब है फ्लेक्सिक ऑगर आलिया सिम ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनाउर को 6-3, 6-4 से हराकर स्पेन के मलागा में 2-0 की अजय बढ़त हासिल करने के बाद कनाडा ने अपना पहला डेविस कप खिताब जीता है। आखिरी क्वीज है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हर घर गंगाजल परियोजना शुरू की है? सही जवाब है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में हर घर गंगाजल परियोजना का शुभारंभ किया। यह राज्य के सूखे क्षेत्र में नल पर गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो, रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।
हेलो लिसनर्स एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स 6th December 2022। दिस इज योर आरजे प्रियंका एंड विदाउट एनी फर्दर डिले वी बिगिन आवर टुडेज एपिसोड विद आवर वेरी फर्स्ट डेली अपडेट व्हिच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंट डे, डॉक्टर आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस 6th December। December 6th, 2022 marks the 66th death anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution. He was the first law minister of independent India, as well as social reformer, economist, thinker and politician. Ambedkar, who was born on April 14, 1891, led from the front alongside Jawaharlal Nehru and Gandhi in the upliftment of poor and backward classes of society. Ambedkar spearheaded the Dalit Buddhist campaign and worked tirelessly for the equal human rights and advancements. Now let's move forward to our second daily update, which belongs to the category of books. Rita Ramamurthy Gupta reveals new book on Savitri Bai Phule. On the 132nd anniversary of Mahatma Jyotirao Phule's death, HarperCollins and Rita Ramamurthy Gupta announced a new book about friends Savitri and Fatima, who worked tirelessly in the 19th century for the education of women and lower castes. The author stated that we are all familiar with the story of how young Malala was shot by the Taliban. Savitri and Fatima were stoned as they went door to door asking parents to send their girls and those from lower castes to school in the mid-19th century. In 1848, they founded the first non-British, non-missionary school for girls with Jyotiba Rao Phule. Now let's move forward to our third daily update, which belongs to the category of state. Uttarakhand High Court to be shifted to Haldwani from Nainital. According to officials familiar with the situation, the Uttarakhand State Cabinet has given in-principle approval to move the High Court from Nainital to Haldwani. They did, however, add that it is not yet a cabinet decision. They stated that the state government will now investigate technical and other aspects of the HC's relocation. There has long been a demand to relocate the High Court from Nainital due to the tourist rush, lack of space and difficult geographical location. Through a large number of lawyers and locals have been opposed to the move. Now let's move forward to our fourth daily update, which belongs to the category of summits and conferences. China holds first China Indian Ocean Region Forum without India. China's expansion into South Asia and Indian Ocean Region IOR continued recently with the organization of the first high-level China Indian Ocean Region Forum on Development Cooperation, attended by 19 countries from the region except India. Despite the fact that the event was held quietly alongside many other events in Kunming, including the 6th China South Asia Expo and the China Indian Ocean Region Think Tank Forum in a hybrid format, it demonstrated China's ongoing quest for a larger presence and role in the strategically important Indian Ocean. Now let's move forward to our fifth daily update, which belongs to the category of defense. India-Australia training exercise Austra-Hind 2022. According to the Defence Ministry, a bilateral training exercise between the armies of India and Australia began on November 28th in Rajasthan. Bilateral training exercise Austra-Hind 22 between the contingents of the Indian Army and the Australian Army is scheduled to take place at Mahajan Field Firing Ranges, Rajasthan from 28th November to 11th December 2022. This is the first exercise in the series of Austra-Hind with participation of all arms and services contingent from both armies, the ministry said in a statement. Now let's move forward to our sixth daily update, which belongs to the category of miscellaneous. Egypt's president invited as chief guest for Republic Day 2023. According to an official statement from the Ministry of External Affairs, India has invited Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi to be the chief guest on Republic Day 2023. The Egyptian president would be the chief guest at the Republic Day celebrations for the first time. Egypt will also be one of the 9 guest countries at the G20 summit in 2023 during India's presidency. Due to the COVID-19 pandemic, India has declined to invite any foreign dignitary as a chief guest for the Republic Day celebrations in 2021 and 2022. Now let's move forward to our seventh daily update, which belongs to the category of summits and conferences. 14th edition of Aero India 2023 to be held from 13th to 17th February 2023 in Bengaluru. Aero India 2023 will be held from the 13th to the 17th of February 2023 at the Air Force Station in Yelahanka, Bengaluru, according to the Ministry of Defence. Since 1996, the show has been held at Air Force Station Yelahanka. Aero India 2023, Asia's largest air show, will feature both domestic and international exhibitors. It will also make virtual exhibitions possible. The biennial show is open to both business and general public visitors. The biennial exhibition will last 5 days. Due to the COVID pandemic, the show was reduced to 3 days in 2021. The Tamil Nadu government has declared Arittapatti village near Mellur in Madurai district a biodiversity heritage site under Section 37 of the Biological Diversity Act 2002. The site, which covers an area of 193.21 hectares, is the state's first biodiversity heritage site BHS to be notified in the state. The Arittapatti village, according to a statement, is surrounded by a chain of 7 barren granite hillocks that act as a watershed and support nearly 72 lakes, 200 natural spring pools and 3 check dams. Now let's move forward to our 9th daily update, which belongs to the category of awards. E-Gram Swaraj, an audit online of Ministry of Panchayati Raj, won Gold Award under the National Awards for E-Governance. The Ministry of Panchayati Raj's E-Panchayat Mission Mode project, E-Gram Swaraj, an audit online, has won the Gold Award in the category Excellence in Government Process Re-Engineering for Digital Transformation of the National Awards for E-Governance. The award recognizes Team E-Governance's excellent and exemplary work, which was supported by Team NIC MOPR. Dr. Jitendra Singh, Union Minister of State for External Affairs, presented the prestigious national award to Shri Alok Premnagar, Joint Secretary MOPR. Now let's move forward to our 10th and last daily update for today, which belongs to the category of international. Monkeypox disease name changed to mpox by WHO. According to the World Health Organization, mpox is now the preferred name for monkeypox. Both names will be used concurrently for 1 year, while monkeypox is phased out, according to the organization. According to the organization, monkeypox was named in 1970, more than a decade after the virus that causes the disease was discovered in captive monkeys. However, monkeypox did not originate in monkeys. Its origin is unknown, and the virus can be found in a variety of other animals. The name was created before the WHO published best practices for disease naming in 2015. So with this, we end our today's episode of Daily Current Affairs Updates, 6th December 2022. Please stay tuned for more learning. This is your RJ Priyanka signing off for the day. Thank you. Hello listeners, and welcome to our English language program Daily Current Affairs Quiz, 6th December 2022. This is RJ Priyanka, and without any further delay, we begin our today's episode with our very first question of today's quiz. So the first question for today's quiz is, for opening of 3-in-1 account, which of the following bank has signed an agreement with broking partner SMC Global Securities Limited? The correct answer for the question is, Indian Overseas Bank, IOB, has entered into an agreement with broking partner SMC Global for opening 3-in-1 account, SB Demat account and trading account. While SB and Demat account will be with IOB, the trading account will be with SMC Global. Now let's move forward to our question number 2. Dash was promoted as Managing Director, MD of the National Dairy Development Board, NDDB. The correct answer for the question is, Acting Chairman of the National Dairy Development Board, NDDB, Meenesh C. Shah, whose term ended on November 30, has been promoted as Managing Director from Executive Director by the Board of Directors, where Shah himself is a member. Now let's move forward to question number 3. Tata Consumer Products Limited, TCPL, is planning to acquire which company? The correct answer for the question is, Tata Consumer Products Limited, TCPL, will reportedly acquire Bisleri International for an estimated ₹6,000 to 7,000 crore. Bisleri, which is India's largest packaged water company, is expected to have a turnover of ₹2,500 crore with a profit of ₹220 crore in financial year 2023. Now let's move forward to question number 4. When the Constitution Day was observed? Constitution Day, also known as Samvidhan Divas or National Law Day, is celebrated in India on November 26th every year. On November 26, 1949, the Constituent Assembly of India formally adopted the Constitution of India. Constitution Day aims to bring awareness about the importance of Constitution and Dr. B. R. Ambedkar. Now let's move forward to question number 5. E-mobility app K-Map for e-vehicle charging stations was recently developed by which of the following state's electricity board? The correct answer for the question is the Kerala State Electricity Board KSEB has developed a mobile app which will serve as a common platform for accessing the services of e-vehicle charging stations. The app, christened K-Map, short for Kerala E-Mobility App, is now on test mode and will soon be available for download on Play Store, KSEB officials said. Now let's move forward to question number 6. This year, which edition of the Raising Day of National Cadet Corps NCC was observed? The correct answer for the question is the National Cadet Corps NCC, the largest uniformed youth organization in the world, celebrated its 75th Raising Day on 27th November 2022. The day was celebrated all over the country with cadets participating in march past, cultural activities and social development programs. Now let's move forward to question number 7. Dash Municipal Corporation is planning to issue India's first municipal green bond for a solar power plant. The correct answer for the question is Indore Municipal Corporation is planning to issue the nation's first local government bond targeting individual investors with proceeds used to fund a solar power project. It seeks to raise as much as 2.6 billion rupees, $31.8 million, through a 10-year bond sale. Now let's move forward to our question number 8. What is the India's GDP growth projection for FY23 according to the S&P Global Ratings S&P? The correct answer for the question is S&P Global Ratings has lowered India's economic growth forecast for the current fiscal year to 7%, down from 7.3% it projected in September. However, it said the domestic demand-led economy will be less impacted by the global slowdown. Now let's move forward to question number 9. By defeating which of the following country, Canada won its first ever Davis Cup title? The correct answer for the question is Canada won their first Davis Cup title after Felix Auger-Aliassime beat Australia's Alex de Minaur by 6-3, 6-4 to give them an unassailable 2-0 lead in Malaga, Spain. Now let's move forward to the 10th and last question of today's quiz. Which of the following state has launched the Har Ghar Ganga Jal project? The correct answer for the question is Bihar Chief Minister Nitish Kumar has launched the Har Ghar Ganga Jal project in Rajgir. It is a unique and ambitious initiative to provide Ganga water on tap in the parched areas of the state. So this ends our today's episode of Daily Current Affairs Quiz, 6th December 2022. Please stay tuned for more learning. This is RJ Priyanka signing off for the day. Thank you.
नमस्कार. चालू घडामोडी या सत्रात मी तेजल आपल्या सगळ्यांचे स्वागत करते. आजची पहिली घडामोड: श्रीलंकेत श्वेतक्रांतीला चालना देण्यासाठी भारतानं सहाय्य करावं अशी विनंती श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांनी केली. श्रीलंकेत दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ आणि अमूल तांत्रिक पाठबळ पुरवणार आहेत. स्थानिक दुग्धोत्पादन वाढवण्यासाठी अल्पकालीन, मध्यम आणि दीर्घकालीन योजना तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळासोबत काम करण्याकरता एक समिती विक्रमसिंघे यांनी नियुक्त केली. श्रीलंका दुधाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर नाही, त्यामुळे त्यांना दरवर्षी 30 कोटी अमेरिकी डॉलर्सचं दूध आयात करावं लागतं. यापुढील घडामोड: गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या अंतिम टप्प्यासाठी 64% जास्त मतदान झालं. किरकोळ अपवाद वगळता निवडणुका शांततेत आणि सुरळीत पार पडल्याचं निवडणूक आयोगानं सांगितलं. मतमोजणी आता होणार आहे. दरम्यान या निवडणुकीत गुजरातमध्ये भाजपाला मोठा विजय मिळेल असं बहुतांश मतदान उत्तर कल चाचण्यांचा अंदाज आहे. गुजरातमध्ये भाजपाला 117 ते 151 जागा मिळतील, काँग्रेसला 30 ते 51, तर आपला 2 ते 21 जागा मिळतील असा या चाचण्यांचा अंदाज आहे. हिमाचल प्रदेशात भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात निकराचा सामना असल्याचं या चाचण्यांमधून स्पष्ट होत आहे. भाजपाला 24 ते 42 तर काँग्रेसला 24 ते 40 जागा मिळतील असा या चाचण्यांचा अंदाज आहे. पुढील बातमी, बांबू लागवड क्षेत्र विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना योग्य दिशा देण्याच्या उद्देशानं केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी एक सल्लागार समिती नेमायला मंजुरी दिली. या समितीत विविध शिक्षण तज्ञ, संशोधक, नव उन्मेषक, प्रगतीशील उद्योजक, संकल्पनाकार, कृषी नेते, विपणन तज्ञ आणि धोरणकर्त्यांचा समावेश असेल. बांबूच्या मूल्य साखळीशी संबंधित सर्व घटकात समन्वय साधून बांबू लागवड क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी संबंधित मंत्रालय आणि सार्वजनिक खासगी क्षेत्राशी सल्लामसलत केली जाईल. केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना म्हणून 2018 ते 2019 दरम्यान पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू मोहीम सुरू करण्यात आली होती. बांबू उत्पादक आणि ग्राहक यांचा परस्पर संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी या मोहिमेअंतर्गत बांबू मूल्य साखळीचा विकास करण्यावर भर दिला जातो. यानंतरची बातमी, युरोप क्षेत्रातल्या व्यावसायिक उलाढालींमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात घट झाली असून ही घसरण सलग 5व्या महिन्यातही कायम टिकून आहे. वाढत्या महागाईमुळे हैराण झालेल्या ग्राहकांचा प्रतिसाद मंदावल्यामुळे युरोप क्षेत्राची अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेनं वाटचाल करत असल्याचं स्पष्ट झालं. S&P संस्थेद्वारे घोषित केला जाणारा PMI निर्देशांक युरोप क्षेत्रातला आर्थिक स्थितीचा विश्वसनीय निर्देशांक मानला जात असून या निर्देशांकानुसार युरोप क्षेत्राच्या आर्थिक स्थितीत ऑक्टोबरच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये सुधारणा झाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून महागाई नियंत्रित करण्याच्या उद्देशानं युरोपची केंद्रीय बँक व्याजदरात वृद्धी करत आहे. यानंतरची बातमी, बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स यांनी नवी दिल्लीत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय यांची भेट घेतली. देशात आरोग्य क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या विविध कार्यकर्त्यांची यावेळी मांडवीय यांनी प्रशंसा केली. कोरोना साथीच्या काळात पहिल्या फळीतल्या आरोग्य सेवकांनी नेत्याप्रमाणे, नायकाप्रमाणे काम केलं असं ते म्हणाले. मेलिंडा गेट्स आणि डॉक्टर मनसुख मांडविया यांनी एक संयुक्त अहवाल प्रकाशित केला असून या अहवालाचं शीर्षक ग्रासरूट सोल्जर, भारतात COVID-19 काळात व्यवस्थापनात आशा सेविका आणि ANM यांची भूमिका असं आहे. मेलिंडा गेट्स यांनी यावेळी भारतातल्या यशस्वी लसीकरण मोहिमेबाबत डॉक्टर मांडविया यांचं अभिनंदन केलं. पुढील बातमी, भारत आणि बांगलादेश यांच्यातला एक दिवसीय क्रिकेट मालिकेतला सामना ढाका इथं होत आहे. 3 सामन्यांच्या या मालिकेत पहिला सामना जिंकून बांगलादेशानं मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. त्यामुळे मालिकेत बरोबरी साधून आव्हान कायम ठेवण्याकरता तसंच मालिका जिंकण्याची उमेद कायम ठेवण्याकरता सामना जिंकण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न आहे. यानंतरची क्रीडा बातमी, कतारमध्ये सुरू असलेल्या फिफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत ब्राझीलनं दक्षिण कोरियाचा 4-1 अशा फरकानं पराभव करत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. तर क्रोएशियानं जपानला पेनल्टी शूटआउटमध्ये पराभूत करून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळवला. ब्राझील आणि क्रोएशियामध्ये उपांत्य फेरीचा सामना होईल. अंतिम 8 संघात इंग्लंड, फ्रान्स, अर्जेंटिना आणि नेदरलँड आधीच पोहोचले आहेत. सिस्क 3 मोरक्को आणि स्पेन यांच्यात सामना होईल. यानंतरची क्रीडा बातमी, भारतीय नेमबाज रुद्रांश पाटील याने इजिप्त मधील केरो येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी स्पोर्ट फेडरेशन अध्यक्ष चषक जिंकला. त्याने 10 रायफल प्ले ऑफ मध्ये इटलीच्या डॅनिलो सोलाझोचा 16-8 पराभव केला. या स्पर्धेत सर्व खंडातील 43 ISSF सदस्य फेडरेशनचे प्रतिनिधित्व करणारे 42 राष्ट्रांचे खेळाडू भाग घेत आहेत. पुढे आहे अहवाल विषयक बातमी, WMO ने आपला पहिला वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वॉटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 प्रसिद्ध केला. या अहवालात 2021 जगातील मोठ्या भागात सामान्य परिस्थितीपेक्षा किती कोरडेपणा नोंदवला गेला, एका वर्षात हवामान बदल आणि लानिना इव्हेंटचा पर्जन्यमानाचा परिणाम दाखवला गेला आहे. पुढील अहवाल विषयक बातमी, DGCA अधिकाऱ्यांच्या मते आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेने जागतिक विमान वाहतूक सुरक्षा क्रमवारीत भारताने 48व्या स्थानावर झेप घेतली. 4 वर्षांपूर्वी भारत 102व्या क्रमांकावर होता. या क्रमवारीत सिंगापूर अव्वल स्थानावर आहे. त्यानंतर UAE आणि दक्षिण कोरिया अनुक्रमे 2र्या आणि 3र्या स्थानावर आहे. या पुढील बातमी, US थिंक टँक एली वॉर्निंग प्रोजेक्टच्या अलीकडील अहवालानुसार 2022 आणि 2023 सामूहिक हत्यांचा सर्वाधिक धोका असलेल्या देशात भारत 8व्या क्रमांकावर आहे. 2022 ते 2023 अहवालात असे म्हटले आहे की पाकिस्तान यावर्षी यादीमध्ये अव्वल आहे, तर येमेन 2र्या, म्यानमार 3र्या आणि इथिओपिया 5व्या, नायजेरिया 6व्या तर अफगाणिस्तान 7व्या क्रमांकावर आहे.
वळूया पुरस्कार विषयक बातमीकडे. चित्रपट निर्माते एस एस राजामौली यांनी न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल 2022 मध्ये RRR या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार जिंकला. हा गट पुरस्कारांच्या सीझनमध्ये लक्ष घालणाऱ्या पहिल्या समीक्षकांच्या गटापैकी एक आहे. जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर रुपये 1200 कोटीहून अधिक कमाई केल्यानंतर हा चित्रपट भारतातील बॉक्स ऑफिसवर सर्वात यशस्वी चित्रपटांपैकी एक म्हणून उदयास आला ही लक्षणीय आणि उल्लेखनीय बाब आहे. भारतीय चित्रपट समीक्षकांकडून याला प्रचंड प्रतिसादही मिळाला. पुढील पुरस्कार बातमी. प्रिन्स ऑफ वेल्स प्रिन्स विल्यम यांनी बोस्टन युनायटेड स्टेट्स येथे घोषित केलेल्या 5 विजेत्यात भारताचे ग्रीन हाऊस इन ए बॉक्स होते. तेलंगणातील खेती या भारतीय स्टार्टअपने विकसित केलेल्या लहान शेतकऱ्यांसाठी हा एक शाश्वत उपाय आहे. यानंतरची पुरस्कार बातमी. कॅनरा बँकेला बँकर्स ऑफ द इयर 2022 मिळाला. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल व्ही प्रभाकर यांनी आयोजकांकडून हा पुरस्कार स्वीकारला. बँकिंग उद्योगासाठी हे प्रतिष्ठित पुरस्कार आहे. कॅनरा बँकेला 2022 भारतातील सर्वोत्कृष्ट बँक म्हणून गौरवण्यात आले आहे. पुरस्कार विषयक बातम्यांनंतर वळूया अर्थ बातमीकडे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या उपकंपनी NSE निर्देशांकाने म्हटले की त्यांनी निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सिरीज अंतर्गत आणखी एक निर्देशांक लॉन्च केला. डिसेंबर 2019 मध्ये NSE निर्देशकांनी भारत बॉन्ड निर्देशांकात एप्रिल 2023 आणि एप्रिल 2030 मध्ये परिपक्वता असलेले पहिले 2 निर्देशांक सुरू करण्याचे ठरवले. जुलै 2020 मध्ये एप्रिल 2025 आणि एप्रिल 2031 मध्ये परिपक्वता असलेले आणखी 2 निर्देशांक सुरू केले गेले होते. यानंतर चिघडामोड. माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर यांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. ते व्यवसायाने शेतकरी आहेत. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे निवेदन यामध्ये त्यांची नियुक्ती जाहीर झाली. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातून 4 वेळा खासदार म्हणून ते निवडले गेले. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे ते सदस्यही होते. 16व्या लोकसभेत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आणि भारत सरकारचे केंद्रीय रसायन आणि खत राज्यमंत्री ते होते. यानंतरची नियुक्ती. भारतीय टेक ब्रँड नॉईजने विराट कोहलीला आपल्या स्मार्टवॉच साठी नवीन ब्रँड अम्बॅसेडर म्हणून नियुक्त केले. नवीन भागीदारी 2 डोमेन एकत्र आणेल, जे ब्रँडचे उदाहरण म्हणून सांगितले जाते. या भागीदारीमुळे ग्राहकांचा विश्वास आणि निष्ठा अधिक दृढ होण्यास मदत होईल असा कंपनीचा विश्वास आहे. नियुक्तीनंतर जाणून घेऊ राष्ट्रीय बातम्या. जगातील आघाडीच्या फुल स्टॅक डेट सपोर्ट आणि जोखीम कमी करण्याच्या प्लॅटफॉर्मने भारतातील पहिल्या इनोव्हेशन लॅबचे उद्घाटन केले, जे भारत आणि मध्य पूर्वेतील बँकिंग उद्योगाच्या कर्ज संकलन विभागासाठी समर्पित आहे. यानंतरची राष्ट्रीय बातमी. भारतीय चित्र साधना आयोजित राष्ट्रीय फिल्म निर्माण कार्यशाळेचं उद्घाटन भाईंदर इथं उत्तनला मुख्य अतिथी विवेक शर्मा यांनी दीप प्रज्वलनानं केलं. भारतीय चित्र साधनेचे मार्गदर्शक नरेंद्र ठाकूर, राष्ट्रीय सचिव अतुल गंगवार, लेखक दिग्दर्शक आकाश आदित्य लामा यावेळी उपस्थित होते. रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीच्या केशवसृष्टी इथं 18 डिसेंबर पर्यंत ही कार्यशाळा होईल. जम्मू काश्मीर, हरियाणा, आसाम, आंध्र प्रदेश येथील विद्यार्थी या कार्यशाळेचा लाभ घेण्यासाठी पोहोचले आहेत. या कार्यशाळेत अभिनय, लिखाण, दिग्दर्शन, सिनेमॅटोग्राफी, निर्मिती, मेकअप, वेशभूषा, कला दिग्दर्शन, चित्रपट संगीत संपादन, लघुचित्रपट कास्टिंग, युनिट सिलेक्शन, लोकेशन हंटिंग, शूटिंग आणि एडिटिंग या विषयांचं मार्गदर्शन केलं जाईल. या पुढील राष्ट्रीय बातमी. तांत्रिक वस्त्र उद्योगासंदर्भातील एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन टेक्नोटेक्स 2023 येत्या 22 ते 24 फेब्रुवारी दरम्यान मुंबईत होईल. या निमित्तानं मुंबईत एक विशेष पूर्व प्रदर्शन कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. केंद्रीय वस्त्र उद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोष आणि राज्याचे वस्त्र उद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं. स्टार्टअप उद्योजकांसाठी टेक्नोटेक्स 2023 ही एक उत्तम संधी आहे असं दर्शना जरदोष यावेळी बोलताना म्हणाल्या. राज्याच्या प्रस्तावित नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 10 लाख रोजगार निर्मिती आणि 36,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांनो, आज आपण चालू घडामोडींचा आढावा घेतला आहे. पुन्हा भेटूया पुढील सत्रात. धन्यवाद.